प्रिय श्रोता नमस्कार। बाइबल अध्ययन कार्यक्रम सत्य वचन लेकर एक बार फिर हम आपकी सेवा में उपस्थित हैं और आशा करते हैं कि आप सब भी आज का अध्ययन करने के लिए हमारे साथ तैयार हैं। हमें पूरा विश्वास है कि इस अध्ययन से आपको आत्मिक लाभ मिल रहा है। जैसा कि आपको मालूम है कि इन दिनों हम पवित्र शास्त्र बाइबल के नए नियम में से प्रकाशित वाक्य पुस्तक का विस्तार से अध्ययन कर रहे हैं और इस पुस्तक का मुख्य विषय है भविष्य में कलीसिया और उसका स्वामी। इसके लेखक यूहन्ना हैं। तो आइए अपने वक्ता के साथ आज के इस अध्ययन में हम सम्मिलित हों, लेकिन इससे पहले मन की तैयारी के लिए सुनते हैं एक मधुर गीत।
प्रिय मित्र, प्रभु यीशु के पवित्र और मधुर नाम में आप सबको मेरा नमस्कार। मैं कुशल पूर्वक हूँ और मुझे आशा है कि आप सब भी परमेश्वर की दया से कुशल पूर्वक हैं और हमेशा की तरह आज फिर से परमेश्वर के वचन में से सुनने और सीखने के लिए अपने प्रिय परिवार और मित्रों के साथ रेडियो के निकट तैयार बैठे हैं। मैं आप सभी श्रोता मित्रों का इस कार्यक्रम में स्वागत करता हूँ और अपने उन सभी नए मित्रों का भी जो आज पहली बार हमारे इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं। मैं आप सबको बताना चाहता हूँ कि हम सब इन दिनों बाइबल में से प्रकाशित वाक्य की पुस्तक से अध्ययन कर रहे हैं, जो बाइबल का अंतिम पुस्तक है। पिछले अध्ययन में हम सब ने देखा कि यूहन्ना ने स्वर्ग में लड़ाई को छिड़ते हुए देखा। एक ओर मिकाएल अपने स्वर्गदूतों के साथ था और दूसरी ओर अजगर अर्थात शैतान अपने दूतों के साथ था। इस लड़ाई में शैतान की सेना हार गई, उसे और स्वर्ग से निकालकर पृथ्वी पर गिरा दिया गया। तो मेरे मित्रों, इससे पहले कि आज हम अपने अध्ययन में आगे बढ़ें, आइए हम सब प्रार्थना करें और परमेश्वर से आज के अध्ययन के लिए सहायता मांगें। दयालु और प्रेम पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर समय के लिए जिसे आपने हम सबों को दिया है कि हम प्रकाशित वाक्य की पुस्तक से अध्ययन कर सकें। इस समय जब हम आपके जीवित और सामर्थ्य वचन से अध्ययन करते हैं, मनन चिंतन करते हैं, तो हमारे आपसे विनती है कि आप हमारे प्रत्येक श्रोता भाई बहनों को अपनी बुद्धि, ज्ञान और समझ प्रदान करें, ताकि जब हम आपके वचनों में से सुनते और सीखते हैं तो निश्चित रूप से आपका वचन हम में से प्रत्येक के जीवन में कार्य करने पाए, ताकि प्रभु हम आपके वचन के द्वारा अपने जीवन में आशीषों को प्राप्त कर सकें। हमारी विनती उन भाई बहनों के लिए है जो इस समय निराश, परेशान और चिंता में हैं, तनाव और दबाव में हैं। आप उन्हें भी अपनी शांति प्रदान करें, आज के वचन के द्वारा उन्हें सांत्वना प्रदान करें। धन्यवाद प्रभु हम सबकी प्रार्थनाओं को सुनने के लिए। प्रार्थना अपने उद्धारकर्ता यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। मित्रों, जैसा कि मैंने आपसे कहा है कि हम प्रकाशित वाक्य की पुस्तक से अध्ययन कर रहे हैं और पिछले अध्ययन के मुताबिक हमने देखा कि यूहन्ना ने देखा कि स्वर्ग में लड़ाई छिड़ गई है और शैतान हार गया है और उसे पृथ्वी पर गिरा दिया गया है। तो आइए हम अपने अध्ययन के क्रम में आगे बढ़ते हुए प्रकाशित वाक्य की पुस्तक 12 अध्याय उसके 10 से 12 पद को पढ़ें। प्रकाशित वाक्य 12 अध्याय 10 से 12, यहां पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, फिर मैंने स्वर्ग से यह बड़ा शब्द आते हुए सुना, अब हमारे परमेश्वर का उद्धार और सामर्थ और राज्य और उसके मसीह का अधिकार प्रकट हुआ है, क्योंकि हमारे भाइयों पर दोष लगाने वाला जो रात दिन हमारे परमेश्वर के सामने उन पर दोष लगाया करता था गिरा दिया गया है। वे मेमने के लहू के कारण और अपनी गवाही के वचन के कारण उस पर जयवंत हुए और उन्होंने अपने प्राणों को प्रिय न जाना, यहां तक कि मृत्यु भी सहली। इस कारण हे स्वर्गों और उनमें रहने वालों मगन हो, हे पृथ्वी और समुन्दर तुम पर हाय, क्योंकि शैतान बड़े क्रोध के साथ तुम्हारे पास उतर आया है, क्योंकि जानता है कि उसका थोड़ा ही समय और बाकी है। मेरे मित्रों, यहां पर हम देख रहे हैं, लिखा है, फिर मैंने स्वर्ग से एक बड़ा शब्द आते सुना। इससे हमें समझ में आता है कि यूहन्ना दर्शक है और सुन भी रहा है। वह चाहता है कि हम यह तथ्य ना भूलें, क्योंकि यह अत्यधिक महत्वपूर्ण है। शैतान के स्वर्ग से निकाले जाने के कारण स्वर्ग में उपस्थित उद्धार प्राप्त मनुष्यों में आनंद मनाया गया। लिखा है, यह बड़ा शब्द आते सुना। ये संभवतः पुराने नियम के भक्त जन हैं या महाक्लेश के भक्त हैं जो अब तक शहीद हो चुके थे। आप देख सकते हैं प्रकाशित वाक्य की पुस्तक 6 अध्याय उसके 9 और 10 पद में, क्योंकि वे अपने भाइयों की चर्चा करते हैं जो अब भी पृथ्वी पर हैं। लिखा है, क्योंकि हमारे भाइयों पर दोष लगाने वाला गिरा दिया गया है। प्रभु यीशु की मृत्यु और पुनरुत्थान के बाद बुराई पर सबसे बड़ा शक्ति प्रदर्शन पहली बार शैतान को स्वर्ग से निकालने के द्वारा प्रकट हुआ है। यह प्रभु यीशु द्वारा इस पृथ्वी की सत्ता हाथ में लेने के अभियान का आरंभ हुआ है। क्रूस पर मरकर प्रभु यीशु ने शैतान को स्वर्ग से निकालने का मार्ग तैयार कर दिया था। कुलुसियों के पत्र 2:14 की भाषा पर आप ध्यान दीजिए, जहां पर लिखा है, और विधियों का वह लेख जो हमारे नाम पर और हमारे विरोध में था मिटा डाला, और उसे क्रूस पर की लो से जोड़कर सामने से हटा दिया है। प्रभु यीशु ने अपनी मृत्यु द्वारा मनुष्य के लिए उद्धार संभव किया। परमेश्वर ने हमारे पापों के ऋण को प्रभु यीशु के क्रूस पर कीलों से जड़कर सामने से हटा दिया। प्रभु यीशु मसीह ने पूरा मूल्य चुकाया है। कुलुसियों की पत्री 2:15 में वह कहता है, और उसने प्रधानताओं और अधिकारों को ऊपर से उतारकर उनका खुल्लम खुल्ला तमाशा बनाया और क्रूस के द्वारा उन पर जय जयकार की ध्वनि सुनाई। मेरा अपना विचार है कि जब वह अपने साथ पवित्र जनों को उस विशाल मंडली में लेकर के या स्वर्ग में गया, तब यहां पर यह आरंभ हुआ है कि वह बंधुओं को बंदी बनाकर ले गया और परमेश्वर की उपस्थिति में पहुंचा दिया। ये पुराने नियम के भक्त जन थे और मेरे विचार में वे इस समूह में उपस्थित हैं जो कहता है हमारे परमेश्वर का उद्धार प्रकट हुआ है। मेरे मित्रों, अब लहू से खरीदी गई 4 महान स्वार्गिक स्वतंत्रताओं का मार्ग खुलता है। हम यहां 4 स्वतंत्रताओं की चर्चा करते हैं जो अभी हमें प्राप्त नहीं है, परंतु यहां ये 4 स्वतंत्रताएं हैं जो प्रभु यीशु के आगमन पर पूरी हो पाएंगी। पहला है उद्धार। इसकी सिद्धि प्रभु यीशु में है। हमारा उद्धार तब तक पूरा नहीं होगा जब तक हम उसकी उपस्थिति में नहीं आ जाएंगे। 1 यूहन्ना 3:2 में लिखा है, हे प्रियो, अब हम परमेश्वर की संतान हैं और अभी तक यह प्रकट नहीं हुआ है कि हम क्या कुछ होंगे। इतना जानते हैं कि जब वह प्रकट होगा तो हम उसके समान होंगे, क्योंकि उसको वैसा ही देखेंगे जैसा वह है। यह उसके पृथ्वी पर आने से सत्य सिद्ध होगा और मेरे विचार में यह पद उसके व्यक्तिगत आगमन से संबंधित है। दूसरी बात हम देखते हैं, सामर्थ्य। जिस प्रकार आज के देश सामर्थ्य का उपयोग कर रहे हैं वह बड़ा ही त्रासदीपूर्ण है। कुछ देश युद्ध करने में सक्षम हैं और आग के समान अन्य देशों में घुस जाते हैं, नगरों को नष्ट करते हैं, लोगों को जान से मार डालते हैं। मनुष्य ने सामर्थ्य का दुरुपयोग किया है, परंतु जब प्रभु यीशु सामर्थ्य के साथ या सामर्थ्य को अपने हाथ में लेकर इस पृथ्वी को नियंत्रित करेगा, तब यह एक अति अद्भुत बात होगी। तीसरी बात हम देखते हैं, राज्य। यह परमेश्वर का राज्य है जिसकी स्थापना पृथ्वी पर होगी। उस समय तक इस पृथ्वी पर शांति, धार्मिकता और स्वतंत्रता नहीं आएगी। पृथ्वी पर प्रभु राज्य की स्थापना वास्तव में आश्चर्यजनक परिवर्तन लाएगी। जी हाँ, इस उक्ति से प्रकट होता है कि प्रभु यीशु के प्रथम आगमन पर राज्य की स्थापना नहीं हुई थी। और हम चौथी बात देखते हैं, उसके मसीह का अधिकार। इससे प्रकट होता है कि प्रभु यीशु ने अभी तक इस संसार का शासकीय अधिकार अपने हाथ में नहीं लिया है। आज वह अपना राज्य स्थापित नहीं कर रहा है, उसके आरंभ करने की प्रतीक्षा करें। ये सब दंड उसके पृथ्वी पर आने की तैयारी में है और मनुष्य को चेतावनी तथा अवसर दिया जा रहा है कि उसकी ओर फिरें। असंख्य जन उसकी ओर फिरेंगे। परमेश्वर के दंड में अनुग्रह का अंश होता है। लिखा है, जो रात दिन हमारे परमेश्वर के सामने उन पर दोष लगाया करता था। इससे प्रकट होता है कि यह आज शैतान की रणनीति का एक भाग है, जो आज कलीसिया के निमित्त मसीह के उद्देश्य और भविष्य में महाक्लेश के भक्तों के निमित्त परमेश्वर के उद्देश्य को अवरुद्ध करे। इस कारण हमारे लिए आज प्रभु यीशु की मध्यस्थता की आवश्यकता है। जिन भक्तों पर शैतान दोष लगाता था उनकी विजय के तीन कारण थे। आइए हम इन तीन कारणों को देखें। पहला है मेमने के लहू के कारण। जी हाँ, मेमने के लहू में चमत्कारी शक्ति है, इसे आप सदा स्मरण रखें और इसे कम ना आंकें। मेमने के लहू के अनेक संदर्भ इस बात को अनिवार्य बनाते हैं कि उसका लहू स्वर्ग में प्रदर्शनार्थ रखा जाए। यह कोई पिछड़ा हुआ विचार नहीं है। पिछड़ापन तो हमारे पापों में है, जिनके कारण उसे लहू बहाना आवश्यक हुआ। यदि आपको और मुझे जय प्राप्त होती है तो यह केवल इसलिए है कि उसने हमारे लिए अपना लहू बहाया है। जी हाँ, हम अपने आप में तो कभी भी जय का जीवन नहीं जी पाएंगे। सबसे अधिक पराजित लोग जिनसे मेरी भेंट हुई है वे तथाकथित विजय का जीवन जीने वाले मनुष्य हैं। मुझे तो वे खून की कमी के रोगी दिखाई दिए हैं। उनके रंग रूप में गहराई वाली बात ही नहीं दिखाई देती है। वे जय का जीवन नहीं जी रहे हैं। मसीह यह जीवन लाता है। यह मेमने के लहू के द्वारा ही प्राप्त होता है। दूसरी बात हम देखते हैं सामर्थ के बारे में, अपनी गवाही के वचन के कारण। जी हाँ, इससे प्रकट होता है कि वे सच्चे शहीद हैं। जो सच्चे मसीही जन हैं वे प्रभु यीशु का इनकार नहीं कर सकते। मत्ती रचित सुसमाचार 10 अध्याय के 33 पद पर लिखा है, पर जो कोई मनुष्य के सामने मेरा इनकार करेगा उससे मैं भी अपने स्वर्गीय पिता के सामने इनकार करूंगा। गवाही देने में कुछ तो है जो शक्ति देता है। आप मुझे गलत न समझें, आज कुछ गवाहियों में गहराई ही नहीं है। कुछ लोगों को तो गवाही देना भी नहीं चाहिए, क्योंकि लोग उनके जीवन को देखते हैं और वे संशयी एवं अच्छाई में अविश्वास करने वाले तो हो जाते हैं। गवाही देने का स्थान कलीसियाई भोज नहीं है, जहां सब आपकी हर एक बात पर आमीन कहें। यदि आपका जीवन गवाही के योग्य है तो आप संसार में गवाही दें, जहां अभक्त निंदक मनुष्य हैं। उन पर प्रकट करें कि आप मसीह के हैं और मसीह में हैं। इसमें शक्तिदायक बात है। ऐसी गवाही में गवाह को ऊंचा बनाने वाली बात है। मैं एक ऐसे मनुष्य को जानता हूं जो व्यापार जगत में है और शरीर में लंबा चौड़ा है। वह एक प्रभावशाली कंपनी का अफसर है। उसके चारों ओर अनेक निंदक हैं। जब वह किसी को निंदा करते हुए सुनता है तब वह विनम्रता पूर्वक उससे कहता है, मैं आपको बताना चाहता हूं कि प्रभु यीशु मेरे लिए क्या महत्व रखता है। मत्ती रचित सुसमाचार 10 अध्याय उसके 33 पद में प्रभु यीशु ने कहा कि यदि कोई उसका इनकार करेगा तो वह भी पिता के समक्ष स्वर्ग में उससे इनकार करेगा। ये लोग सच्चे शहीद हैं। तीसरी बात हम देखते हैं इसमें, उन्होंने अपने प्राणों को प्रिय ना जाना। यह एक ऊंचा स्तर है जहां हम पहुंचे हैं। हमें प्रभु यीशु के प्रेम को, प्रभु यीशु को अपना प्रथम प्रेम बनाना है और अपने स्वार्थपूर्ण प्रेम को दूसरा, तीसरा और चौथा, वरन अन्य कोई स्थान देना है। निसंदेह हम में आत्माभिमान होना है, आत्मसम्मान होना है, परंतु हमें प्रभु यीशु को पहला स्थान देना है। यदि हम उसे जीवन में पहला स्थान दे दें तो उसके लिए इस पृथ्वी पर जीने में हमें कोई समस्या नहीं होगी। आज की समस्या वे नियम नहीं हैं जिनका आप पालन कर रहे हैं, परंतु उन नियमों के पीछे क्या है वह समस्या है। उन नियमों के पीछे आपको चाहिए मेमने का लहू, अपनी गवाही और प्रभु के लिए पहला प्रेम। सेवा का मुख्य आधार ही प्रेम है। जी हाँ, प्रभु यीशु ने शमौन पत्रस से पूछा, क्या तू मुझसे प्रेम करता है? जब पत्रस ने उससे अपने प्रेम का अंगीकार किया, चाहे दुर्बल ही हो, तब प्रभु यीशु ने उससे कहा, मैं तुझे काम में लूंगा, तू मेरे मेमने को चराएगा। यूहन्ना रचित सुसमाचार 21 अध्याय उसके 15 से 17 पद में हम इसे पढ़ते हैं। पत्रस ने जब पहला कलीसियाई संदेश सुनाया था, तब उस युग की जनसंख्या के अनुपात में संसार के इतिहास में सबसे अधिक मन फिराने वाले हुए थे। मेरे प्रियो, शैतान को स्वर्ग से निकालने की दो गंभीर प्रतिक्रियाएं हुई थी। एक, स्वर्ग में आनंद मनाया गया था कि यह भयानक, कष्टदायक, घातक सांप सदा के लिए बाहर कर दिया गया। तदुपरांत पृथ्वी पर हाय हाय होने लगी। यह तीसरी हाय है जिसमें 7 प्रकोप के कटोरे उंडेले जाते हैं। पृथ्वी के लिए एक ही ढाड़स बंधाने वाली बात यह है कि शैतान का समय इस पृथ्वी पर केवल 42 महीनों का है। इस समय महाक्लेश अधिक भयानक हो जाएगा। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक 12 अध्याय उसके 13 और 14 पद में हम आगे पढ़ते हैं, लिखा है, जब अजगर ने देखा कि मैं पृथ्वी पर गिरा दिया गया हूं, तो उस स्त्री को जो बेटा जनी थी सताया, पर उस स्त्री को बड़े उकाब के 2 पंख दिए गए कि सांप के सामने से उड़कर जंगल में उस जगह पहुंच जाए जहां वह एक समय और समयों और आधे समय तक पाली जाए। यह संसार में उठी अंतिम यहूदी विरोध की लहर होगी और अत्यधिक भयानक होगी, क्योंकि शैतान पृथ्वी पर होगा और वह जानता है कि उसका समय बहुत कम है। वह इस्राएल से घृणा करता है क्योंकि वह जानता है कि प्रभु यीशु शरीर के भाव से इस्राएल ही में से उत्पन्न हुआ था। यह याकूब के कष्टों का समय होगा। यही कारण है कि मैं आज इस्राएल के स्वदेशवास में आनंद नहीं मनाता, जबकि अनेकों के विचार में इस्राएल का आज स्वदेश स्थापित करना प्रभु राज का आरंभ है। वे प्रभु राज के लिए नहीं, महाक्लेश के लिए स्वदेश लौट रहे हैं। यह परमेश्वर का वचन कहता है। लिखा है, बड़े उकाब के 2 पंख। कुछ लोगों के विचार में यह हवाई जहाज है जो इस्राएलियों को छिपने के स्थान में ले जाएगा, जिसे वे पेत्रा का चट्टानी नगर कहते हैं। मैं समझ नहीं पाता कि हवाई जहाज वहां कैसे उतरेगा। यह समस्या मेरी नहीं, उन लोगों की भी है जो इस्राएलियों को हवाई जहाज द्वारा पेत्रा नगर भेजना चाहते हैं। उकाब के पंख इस्राएल के लिए कोई असामान्य बात नहीं है। यह मिस्र से इस्राएल की मुक्ति की स्मृति है। निर्गमन की पुस्तक 19 अध्याय के 4 पद में परमेश्वर ने उनसे कहा था, तुमने देखा है कि मैंने मिस्रियों से क्या क्या किया, तुमको मानो उकाब पक्षी के पंखों पर चढ़ाकर अपने पास तो लाया हूं। वे अपने प्रयासों या अपनी योग्यता से नहीं निकल पा रहे थे और ना ही निकल पाते। वे परमेश्वर के चमत्कारों द्वारा वहां से निकल पाए थे और उकाब के पंख उनके लिए चिन्ह बन गए थे। महाक्लेश में भी इस्राएली अपने आप मुक्ति नहीं पा सकेंगे और कोई भी उन्हें निकलने में सहायता नहीं करेगा, परंतु परमेश्वर अपने अनुग्रह में उन्हें उकाब के पंखों पर निकाल लाएगा। आगे हम देखते हैं, लिखा है, जंगल में उस जगह। धर्मशास्त्र में नहीं कहा गया है कि वह स्थान चट्टानी नगर पेत्रा है, हो भी सकता है, परंतु हम नहीं जानते हैं। जंगल के संबंध में अनेक विचार हैं। कुछ का कहना है कि यह संसार की विभिन्न जातियों का जंगल है। दूसरे शब्दों में इस्राएली एक बार फिर तितर बितर होंगे। मत्ती रचित सुसमाचार 24 अध्याय उसके 16 पद में प्रभु यीशु कहता है, पहाड़ों पर भाग जाएं। यह संभवतः वही स्थान है जिसमें इस्राएल मूसा के साथ 40 वर्ष तक रहा था। इस बार 42 महीनों का समय होगा। समय और समयों और आधे समय तक का यही अर्थ है। महत्वपूर्ण बात स्थान नहीं है, महत्वपूर्ण बात यह है कि परमेश्वर उन्हें अपने अनुग्रह से बचाए रखेगा। मेरे मित्रों, आगे हम देखते हैं पाली जाए। इससे हमें वह समय स्मरण होता है जब परमेश्वर ने मन्ना स्वर्गीय भोजन बरसाया और चट्टान से पानी निकाला था। वह उन्हें भविष्य में भी इसी प्रकार संभालेगा। यह इसराइलियों के लिए है कि वह उन्हें संभालेगा। मेरे प्रिय मित्रों, आज हम सबों के लिए भी एक विचार करने की आवश्यकता है, क्योंकि दिन बहुत थोड़े हैं, समय बहुत कम है, और आज हम कहां पर हैं? क्या हम परमेश्वर की निकटता में हैं या हम परमेश्वर से दूर हैं? हमें विचार करना है और देखना है कि हम किस भाग में हैं, क्योंकि हमारे लिए समय इंतजार नहीं करता रहेगा। मेरे प्रियो, आज यहाँ पर हमारे अध्ययन का समय समाप्त होता है, परंतु मुझे विश्वास है कि आज के इस अध्ययन के द्वारा आपने अपने जीवन में अवश्य ही आत्मिक लाभ प्राप्त किया है। प्रभु इस वचन के द्वारा निरंतर आप सबको आशीष दे और आप सबकी सहायता करे।
अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम सत्य वचन। हमें विश्वास है कि आज का ये अध्ययन आपके आध्यात्मिक जीवन के लिए फायदेमंद सिद्ध हुआ है। हम आपसे जानना चाहेंगे कि इस अध्ययन से आपको और क्या क्या आशीष मिली हैं। हम आपकी जानकारी के लिए बता दें कि आपको देने के लिए हमारे पास नया नियम एवं पूरी बाइबल उपलब्ध है। यदि आप इसे प्राप्त करना चाहते हैं तो हमें इस पते पर लिखें, कार्यक्रम सत्यवचन, TWR इंडिया, पोस्ट बॉक्स नंबर 317, लखनऊ 226001, उत्तर प्रदेश। पता एक बार फिर से सुन लीजिए, कार्यक्रम सत्यवचन, TWR इंडिया, पोस्ट बॉक्स नंबर 317, लखनऊ 226001, उत्तर प्रदेश। आप इस नंबर पर हमें SMS या टेलीफोन भी कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है 9198210018। एक बार फिर से सुन लीजिए, हमारा मोबाइल नंबर है 9198210018। नोट करें हमारा एक और मोबाइल नंबर 09651433397, 09651433397। इसके अलावा आप हमें ईमेल भी भेज सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है hindittb@twr.in, hindittb@twr.in। और अब इसी के साथ कार्यक्रम का समय यहीं पर समाप्त होता है। अगले कार्यक्रम में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए, प्रभु आपको आशीष दे।